नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।